میں موجود ہیں، اور اگر پرویز الہی صاحب کو بھی ان کے قریب لایا گیا تو پھر لیڈران تو اس وقت یہی موجود ہیں جنہوں نے بات کرنی ہے یا کرانی ہے یا رابطہ کار یا سہولت کار بننا ہے، بات ہونی ہے تو انہی سے موجود ہونی ہے. اب ہم نوابزادہ نصر اللہ خان یا اس طرح کے بڑے لیڈر تو ہمارے پاس دستیاب نہیں ہیں.
دیکھیے، بات کرنے والے اور بیچ میں پڑھنے والے، ان کا ویٹ اتنا ہونا چاہیے کہ دونوں سائٹ جو ہیں وہ ان پہ ٹرسٹ کر سکے.
ٹھیک ہے.
اب شاہ محمود صاحب کی تو خیر چلے بات ہے، ابھی بھی وہ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ شاہ محمود صاحب جو ہے وہ جیل میں بھی ہیں، بھگت رہے. باقی لوگ جو لوگ چھوڑ کے ان کو چلے گئے اور جا کے ان کے خلاف تقریریں کر رہے ہیں، گالیاں دے، ان کا رول میرا خیال ہے بڑا مشکل ہو گیا. وہ اب دوبارہ عمران خان صاحب ان پہ ٹرسٹ کریں یہ تو پاسبل مجھے نہیں لگتا.
ٹھیک.
تو اس طرح کے کوئی اور لوگ آنے پڑیں گے بیچ میں، جن کے درمیان ایک برج بن کے وہ دونوں طرف سے کام، یعنی دونوں طرف سے ٹرسٹ قائم کر سکے.
جی.
صدر صاحب بھی ہیں، لیکن صدر صاحب بھی اب وہ رول میرا خیال ہے پلے نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بھی رہ گئے.
جی.
تو یہ کام تو یہ ہونا ہے، تو ہونا یہی کام ہے کیونکہ اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں. اگر عمران خان کو آپ مائنس کر دیں اور الیکشن بھی کرا لیں اور سارا کچھ کرا لیں، کوئی فائدہ نہیں ہے کسی چیز کا. سب ایسے یہ جو معاملات خراب ہیں یہ اس سے زیادہ خراب ہو جائیں گے.
جی.
تو پھر ان کو تو لانا پڑے گا، اس مین سٹریم میں لانا پڑے گا.
جی.
اب وہ کس طرح آتے ہیں، کون لاتا ہے، یہ ہے سب سے بڑا مسئلہ. اور میرا خیال ہے یہ امریکہ یہ جو باتیں چل رہی ہیں کہ جی تم یہاں آؤ بات کرتے ہیں، اور بیچ میں سعودی عرب بھی ہیں اور باقی لوگ بھی ہیں، اس طرح کے کوئی دو چار گارنٹرز کو بیچ میں بیٹھنا پڑے گا.
جی.
جن کی گارنٹیز کو ایکسیپٹیبل ہوں دونوں سائڈ کو، تو تب یہ معاملہ آگے چل سکتا ہے.
اچھا، آپ جس طرح واشنگٹن میں ان کے آصف منیر کے دورے کی بات کر رہے تھے، اگر وہ یہاں آتے ہیں تو کیا ہمارے واشنگٹن والے دوستوں کو اور سعودی عرب والوں کو اور باقی بھی یورپی یونین ہو گئی یا جتنے بھی لوگ ہیں، کیا ان کو نظر نہیں آ رہا کہ پاکستان میں ایک پیرلل گورنمنٹ سسٹم چل رہا ہے؟ ایک بظاہر ہماری گورنمنٹ ہے اور ایک پیرلل سسٹم ہے جس میں عمران ریاض خان کو اٹھا کے غائب کر دیا جاتا ہے، شیخ رشید کو اٹھا کے غائب کر دیا جاتا ہے، عثمان ڈار کو غائب کر دیا جاتا ہے، اظہر مشوانی کے بھائی ظہور مشوانی کو غائب کر دیا جاتا ہے، اور پتہ نہیں کتنے ایسے ہیں جن کا آج تک کہیں ذکر ہی نہیں ہوا، اور وہ تین تین چار چار پانچ پانچ مہینے تک غائب رہتے ہیں، اور اس کے بعد بالآخر آرام سے خاموشی سے آ کے اسے واپس بھی عمران ریاض کو کر دیا گیا اور رسید بھی لے لی گئی گھر والوں سے. تو یہ جو پاکستان میں ایک پیرلل گورنمنٹ کا سسٹم ہے، کیا انٹرنیشنلی جب لوگ کسی ٹیبل پہ آئیں گے تو وہ ان سے پوچھیں گے نہیں کہ آپ بنیادی شخصی آزادیوں کے حوالے سے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اور یہ کیا آپ نے مچا رکھا ہے پاکستان میں؟ طوفان بدتمیزی کہہ لیں اسے، کیا کہیں، کیسے ان لوگوں سے یہ باتیں کریں گے اور یہ کیا جواب کیا دیں گے انہیں کہ کیا ہے؟
دیکھیے، یہی سب سے بڑا مشکل ہے، اور یہی میرا خیال ہے، مجھے ابھی انفارمیشن نہیں ہے.
جی.
کہ یہ جو ان کا دورہ پلان ہوا تھا کہ وہ آئیں اور یہاں بیٹھے، یہی سب سے بڑا مسئلہ ہوگا کہ وہ آ کے بیٹھ جائیں باتیں کر لیں.
جی.
لیکن پھر اس کا نتیجہ ذمہ داری کس کی ہوگی؟ اگر واپس جا کے وہ وہی کچھ کرتے ہیں جو کہ ابھی کر رہے ہیں،
جی،
پیرلل گورنمنٹ چلا رہے ہیں جیسے آپ کر رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، پیرلل گورنمنٹ چلا رہے ہیں، وہ جا کے دوبارہ وہ پیرلل گورنمنٹ ہی چلاتے ہیں اور زیادہ سختی کرتے ہیں، تو پھر لوگ کہیں گے کہ جی ان کو امریکہ کے آشیرواد بھی مل گئی ہے، یہ وہاں سے ابھی آئے اور جی. انہوں نے اور سختی کر دی تو امریکہ کو اور گالی پڑے گی.
جی.
اگر وہ آ کے پیرلل گورنمنٹ کو کہیں اچھا جی ہم اس کو بند کرتے ہیں، تو بیچ میں آئے کوئی نیگوشیٹر، تو لوگ کہیں گے کہ جی امریکہ بیچ میں آ گیا ہے اور یہ آ گئے، انہوں نے کچھ نہ کچھ ڈیل کرائی ہے اور ڈیل ہو گئی ہے. تو یہ بڑی سینسیٹیو باتیں ہیں دونوں سائڈ کے لیے.
جی.
اور یہ اس طرح کی پبلک وزٹ جو عام پبلک ڈپلومیسی میں یہ باتیں میرا خیال ہے طے نہیں ہوں گی، یہ باتیں ہوں گی کسی نہ کسی پرائیویٹ ڈپلومیسی میں.
جی.
پرائیویٹ کوئی لوگ ہوں گے جو جائیں گے، آئیں گے، ملیں گے، بات کریں گے، کوئی گراؤنڈ بنائیں گے، اور اس کے بعد پھر کوئی چیز اب طے ہو جائے گی.
جی.
کہ ہم اب آگے بڑھنے کے قابل ہیں، اب یہ رستہ ہم نے طے کر دیا ہے، تو پھر یہ ملاقاتیں ہو سکتا ہے کہ ہوں اور آگے چلیں. تو یہ رستہ تو بڑا یعنی اب. اور دوسری امپورٹنٹ بات یہ کہ الیکشن سر پہ ہے.
جی.
الیکشن کی ڈیٹ جو ہے وہ اب زیادہ بڑھا نہیں سکتے آپ آگے.
جی.
اور الیکشن اب آ جائے اور یہ ساری چیزیں طے نہ ہو تو وہ بھی ایک بہت بڑا عذاب ہوگا ان کے لیے کہ جی ہماری تو ابھی سارا کوئی فیصلہ ہی نہیں ہوا اور الیکشن بھی سر پہ آ گئے، تو اب کیا کریں؟
جی.
تو ان مصیبتوں کو ایسے میں نے ایک آرٹیکل بھی تھوڑے دن پہلے لکھا تھا کہ ہمارے چیف صاحب جو ہیں وہ بڑے پریشان ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں منجی کتے ڈاما والی کہانی ہو رہی ہے.
جی.
کہ کیا کروں بھائی، کدھر جاؤں؟ इधर भी मसला है उधर भी मसला है, चीजें ठीक भी नहीं हो रही, जो मैं करता हूँ वो आगे से उसका रिजल्ट भी नहीं आता। इमरान खान साहब खड़े हो गए, नवाज शरीफ साहब को लाने की कोशिश की तो वो उल्टा पांव पे खड़े हो गए, पता नहीं ये नहीं किस तरह के लोग हैं
जी।
ये कि हालात इनके लिए बड़े खराब है।
अच्छा, एक और जो सुप्रीम कोर्ट में डेवलपमेंट हुई है धरना, फैजाबाद धरना केस के हवाले से, वो चार साढ़े चार साल तक मामला दबा रहा केस जो है, अब उस पर दोबारा काजी फायज ईसा साहब आए हैं, उन्होंने दोबारा उस पर हियरिंग शुरू कर दी है, और अब कल तक तो पेमरा ने, जो फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है लेकिन जेर असर किसी और के है, और इंटेलिजेंस ब्यूरो ने, उन्होंने तो अपनी रिव्यू पिटीशन, अपनी रिव्यू की दरखास्तें जो थी वो वापस ले ली हैं। वजारत दफा ने जो कहा हुआ था, वजारत दफा ने कहा था कि फलां फलां उनमें से पैराग्राफ और फलां फलां फिक्रे जो हैं वो हजफ कर दिए जाएं, जिससे वो समझते थे कि हमारे रियासती इदारे हिट हो रहे हैं, हमारी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट हिट हो रही है। और अभी शेख रशीद साहब जो इतना अरसा कामयाबी से छुपे रहे, अचानक वो उन्हें उठा लिया गया या वो खुद पेश हो गए या जो भी सिलसिला हुआ, उनकी दरखास्त जो है अभी उन्होंने दरखास्त वापस नहीं ली, लेकिन उन्होंने समात मुलतवी करने की इस्तदा की है। तो शेख रशीद साहब अगर उन्हें उठाने वालों ने उठा लिया है, और साथ ही उनका वकील वहां कोर्ट में पेश होके, क्योंकि वो भी फैजाबाद धरना केस में उनके भी एक रिव्यू पिटीशन उनकी भी गई हुई थी, उन्होंने समात मुलतवी करने की कही है, और इधर काजी फायज ईसा साहब ने जो ही इसकी हियरिंग शुरू किया तो काजी फायज ईसा साहब के बारे में उल्टी सीधी तस्वीरें जो हैं और उनके क्लिप्स वो सोशल मीडिया पर आना शुरू हो गए हैं। तो ये वजारत दफा वर्सेज काजी फायज ईसा, ये सुप्रीम कोर्ट में कोई नया मैदान जंग जो है वो वहां कोई असर इनकी कोई और लड़ाई शुरू होने वाली है?
एक नई डायमेंशन खुली है सुप्रीम कोर्ट में। काजी फायज ईसा साहब आए हैं और उन्होंने आते के साथ ही जैसा पहला उनका केस था कि जी ओपन कर दिया और मीडिया को भी खोल दिया और सारे पाकिस्तान ने देखा और उसके फिर कुछ मतलब रिपरकशन भी हुए
जी।
अब दूसरा केस उन्होंने आके ये वाला उठा लिया
जी।
अब ये वो उनके पास टाइम नहीं है, काजी फैज साहब के पास इतना लंबा उनके पास टेन्योर नहीं है कि वो ये आराम से बैठ के इन चीजों को हल करें। वो चाहते हैं कि जितने जल्दी से जल्दी मैं अपना ये काम कर सकूं वो करने के लिए आगे। एस्टेब्लिशमेंट में ये बाकी लोग सारे अपने मसलों में फंसे हुए हैं कि जी हम किस कीचड़ में फंसे हैं और ये काजी साहब ने आगे या अपना हमारे लिए और मुसीबत डाल दी है। तो अभी उनको मेरा ख्याल है कुछ थोड़ा बहुत कहा गया होगा कि जी अल्लाह का वास्ता है थोड़े दिन ठहर जाए सर
जी।
फिर आप कर लीजिएगा। तो ये वो क्योंकि वो मामला जब खुल गया तो उसमें तो और ज्यादा फिर बातें होंगी, उसमें जो जनरल साहिबान थे उनकी पकड़ भी होगी, उनको गाली गलौज भी होगी फिर। और अगर उन्होंने कहा कि जी इसको खोल रहे हैं आप टीवी पे भी दिखाएं तो वो तो पता नहीं क्या अजाब होगा, वो मुश्किल लगता है, ऐसा तो नहीं हो सकता। मगर वो केस अभी मेरा ख्याल है शायद ना खुले, क्योंकि वो फिर बहुत एकदम कॉन्फ्रंटेशन बहुत आगे बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। अभी ये इलेक्शन वलेक्शन और ये लोगों के आपस में एक अंडरस्टैंडिंग किसी तरीके से हो जाए कि हमने आगे कैसे चलना है, फिर वो बातें आ सकती हैं, हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल नहीं।
थैंक यू शाहीन साहब। साहब अभी आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, टाइम बहुत शॉर्ट है लेकिन वो भी जरूरी है। हमारे एक फवाद हसन फवाद साहब होते थे, शायरी भी करते थे, जेल भी उन्होंने बड़ी बहादुरी से काटी। मियां नवाज शरीफ साहब
होते हैं
मियां नवाज शरीफ साहब के राइट हैंड रहे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे, लेकिन उन्होंने एक री इमेजिंग या री इमेजिनिंग पाकिस्तान का एक बहुत सुहाना ख्वाब जो है लॉन्च किया था, और उनके साथ मिफ्ता इस्माइल, नवाज कोकर, शायद खाकान अब्बासी चौधरी, ये फवाद पीटीआई वाले, पूरा एक ग्रुप था इनके साथ। तो महमल सरफराज, हमारी जर्नलिस्टिक कम्युनिटी के लोग भी उनके साथ थे, लेकिन अचानक फिर एक दिन पता चला कि उन्होंने केयर टेकर गवर्नमेंट में वजारत का हल्फ उठा लिया, तो वो सारा सुहाना ख्वाब तो चिकना चूर हो गया कि ये वो भी उन्हीं जॉब सीकर्स में से एक साबित हुए कि वो सिर्फ एक जॉब उन्हें मिलने की देर थी, सारी री इमेजिंग और री इमेजिनिंग हो जानी थी। वो चले गए और वहां उन्होंने वजारत निजकारी के वजीर के तौर पर हल्फ उठाया, और हल्फ उठाने के विद इन अ फ्यू आवर्स पीआईए की बिडिंग और रोजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क की बिडिंग के हवाले से अखबारात में इश्तेहार आने शुरू हो गए। तो एक आम आदमी देखता है कि ये वही फवाद हसन फवाद साहब हैं जो कल तक मियां नवाज शरीफ साहब के राइट हैंड थे, फिर उन्होंने री इमेजिंग पाकिस्तान का कहानी डाली, अब वो वजीर निजकारी बने हैं, वजारत भी अपनी मर्जी के लिए है, और जाते ही उन्होंने स्टेट ओन एंटरप्राइजेज जो है उनकी निजकारी पे काम शुरू कर दिया है। तो क्या ये फिर कोई ऐसा तो नहीं होने वाला कि फिर मियां नवाज शरीफ साहब के जो जिस तरह के सैफुर रहमान और इस तरह के और कतरी और इस तरह के सिलसिले हैं, वही लोग फिर औने पौने दोमों ये स्टेट एंटरप्राइजेज जो है वाय कर लेंगे, और इन्होंने कहा है कि हमने दिसंबर तक पीआईए की निजकारी कंप्लीट करनी है।
ये कोशिश तो पूरी करेंगे कि किसी न किसी तरह जल्दी से ये सारा जो पब्लिक बड़े बड़े इदारे हैं इनको बेच दिया जाए और अपने दोस्तों को दे दिया जाए और उसमें से जो अपना कट बनता है या जो अपना जो भी डील बनती है बना ली जाए, ताकि जाने से पहले, इलेक्शन से पहले किसी तरह
जी,
ये हो जाए
जी।
लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इतनी जल्दी ये कामयाब हो सकेंगे, क्योंकि ये पीआईए है, पाकिस्तान स्टील है, पाकिस्तान रेलवे है और बहुत सारी ये पाकिस्तान के असासे हैं
जी।
और इनको अगर आप ओने पौने बेचने की बात करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं बीच में अदालतें फिर आएंगी और अदालतों को लाया जाएगा बीच में, क्योंकि ये इनको रोकें, ये तो भागते चोर की लंगोटी वाली बात करने वाली हो गई कि जी ये तो पता है कि थोड़े दिन में हमने भागना है,
बिल्कुल,
तो चलो जी जो कुछ हमने लूटपाट करनी है जल्दी कर लो। तो ये मसले हैं, लेकिन ये कि इतनी जल्दी ये खा पी के भागने वाला मुश्किल है। फवाद साहब बड़े होंगे, मगर ये देख छोटे छोटे लोग आपस में मिलकर कोशिश करते हैं कि जी हम भी कुछ कर लें, अपने लिए बना लें जगह, लेकिन वो बन नहीं सकती और ना बनेगी। ये सारे मिलके 10 पार्टियां पहले बन चुकी है, एक वो उन्होंने जहांगीर तरीन साहब ने बनाई थी, फिर परवेज खटक साहब ने बनाई, फिर कोई और बना रहा था, फिर पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं लोग, अब्बासी साहब भी अपनी पार्टी बनाने के चक्कर में, ये सब किस्से कहानी है, अपने बार्गेनिंग पोजीशन बनाने की बातें। कोई बार्गेनिंग की पोजीशन में है नहीं इस वक्त, ना किसी के पास कार्ड है, ना किसी के पास कोई असली माल है कि जो बार्गेन कर सके। कोशिश सब कर रहे हैं, करेंगे, लेकिन ये कि इतनी जल्दी ये भागते भागते ये चोरी का माल नहीं है कि जी आप फेंक के चले जाएंगे, बहुत मुश्किल है।
मियां नवाज शरीफ साहब की इस लंदन वाली तकरीर के बाद थोड़ा सा एक और सिलसिला खबरें आई हैं कि मुस्लिम लीग नवाज के अंदर भी एक कोई ग्रुप बनाने की या बनने की एक बातें चल रही हैं कि शायद लाहौर से कोई चंद मुस्लिम लीग नवाज के खास लीडर जो हैं वो अलग एक ग्रुप या पार्टी बनाने के सोच रहे हैं, क्या इस तरफ भी आपने कोई खबरें सुनी है?
सर मैंने कोई ऐसी सॉलिड खबर तो नहीं सुनी, मगर अगर ऐसी बात हो भी तो आप किसका नाम लेंगे, कौन इस इतनी पोजीशन में है जो इनकी खानदानी ये मौरूसियत जो है, ये विरासत जो है, इसको चैलेंज करने के काबिल हो और सक्सेसफुली खड़ा होकर कर सके? मुझे तो कोई नहीं देखिए, ये सारे के सारे इनके जी हजूरी है, बैठ के पांव बैठ के जी सर करते हैं और दौड़ दौड़ के जाते हैं लंदन, दौड़ दौड़ के आते हैं और उसके बाद वो इनके खिलाफ पार्टी बना के खड़े होंगे, मुझे तो नहीं लगता।
ख्वाजा साद रफीक जैसे लोग जो हैं वो इधर उधर तकरीरें करते हैं,
बनाने के चक्कर में है, बढ़ाने के चक्कर में है, तो देखें।
मैंने कहा ख्वाजा साद रफीक जैसे लोग इधर उधर बातें करते रहे हैं, वो नालान रहे हैं इनके फैसलों से?
बहुत सारे लोग नालान हैं जी, अगर आप खुला छोड़ दें लोगों को और अगर ओपनली आप बात करने दें और आपको पता हो कि जी कोई हमें हमारे ऊपर कोई मुसीबत नहीं आएगी, तो आधे से ज्यादा लोग इन लोगों को छोड़ देंगे, मगर वो असल में ग्रिप उनकी वो ऐसी है कि बाप है फिर बेटा है, बेटी है, बेटे के बाद बेटे हैं, बेटे के बाद और उनके बेटे हैं, तो वो असल तो मसला वो है। और ये सब अपने यूज होते हैं अपने वक्त में, कोई इधर यूज होता है, कोई उधर यूज होता है, बाद में चैचे करते रहते हैं, किसी में हिम्मत नहीं है कि खड़े होके सही कुछ बोल सके,
बहुत
कोई एक्शन कर सके
जी
उनके खिलाफ।
बहुत शुक्रिया शाहिन सबाई साहब,
थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपका,
थैंक यू सर। नाज़रीन इकराम, ये थे शाहिन सबाई, पाकिस्तान के सीनियर ट्रेन जर्नलिस्ट, वो वाशिंगटन डीसी में होते हैं, आज हमारे प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू थे। जिस तरह उन्होंने कहा कि कोशिशें लोग बहुत करते हैं लेकिन अल्टीमेट कामयाबी उसे होगी जिसके पीछे पब्लिक है, और पब्लिक जिसके पीछे होती है उसका स्टांस और उसकी बात को ही सॉलिड बात कहा जा सकता है। वैसे तो मियां नवाज शरीफ साहब लंदन से तकरीर करते हुए बेशक ये शेर पढ़ते रहे कि बैठे हुए हैं हम दिल में तहैया तूफां किए हुए। मियां साहब आप तहैया तूफां किए हुए बैठे होंगे, लेकिन आप पाकिस्तान तशरीफ लाएं, पाकिस्तान की अवाम भी बहुत सारा तहैया तूफां किए बैठी है, क्योंकि आपके भाई साहब ने 16 महीने में पाकिस्तान में महंगाई, बेरोजगारी, लाकानूनीत और गैर यकीनी की जो सूरत हाल पैदा कर दी है, उसके बाद पाकिस्तान के अवाम के दिलो दिमाग में जो तहैया तूफां है, वो अगर इलेक्शन में आप तशरीफ लाते हैं या आपके भाई या आपकी साहबजादी तशरीफ लाती हैं, तो यकीनन आपको आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। अपना और अपने गिर्दोनवा के लोगों का इसी तरह ख्याल रखिएगा जिस तरह आप चाहते हैं कि आपका ख्याल रखा जाए। आइंदा हफ्ते एक और मौजूद मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह अल्लाह की बुरहान।
يا عباد الرحمن يا عباد الرحمن فطرت کے سرود ازلی اس کے شب و روز آہنگ میں یکتا صفت سورہ رحمان فطرت کے سرود ازلی اس کے شب و روز آہنگ میں یکتا صفت سورہ رحمان بنتے ہیں میری کارگہ فکر میں انجم فکر میں انجم لے اپنے مقدر کے ستارے کو تو پہچان اللہ اللہ کی برہان یا عباد الرحمن یا عباد الرحمن یا عباد الرحمن يا عباد الرحمن.
You are listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto.
ये नंबर नोट कीजिए जरा 6475109494 पूछिए क्यों क्योंकि ये नंबर है अली याजदानी का और वो है मॉर्गेज एजेंट और उनकी बात कुछ अलग है पूछिए क्यों क्योंकि अली याजदानी आपको लेके देते हैं सही रेट सही टर्म्स के साथ सही मॉर्गेज पूछिए क्यों क्योंकि वो है अकाल मॉर्गेजेस के साथ
अकाल 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 मॉर्गेजेस
लाइसेंस नंबर 10845 इंडिपेंडेंटली ओन्ड एंड ऑपरेटेड अब हम पूछे कुछ नंबर याद है ना आपको 6475109494 अली याजदानी
कौन कहता है कि इंश्योरेंस कंपनियां वक्त पर क्लेम अदा नहीं करती एक और मिसकंसेप्शन कि लाइफ क्रिटिकल इलनेस डिसेबिलिटी या फिर ट्रेवल इंश्योरेंस तो बहुत महंगी है नहीं साहब आप एक बार इंश्योर प्रो के फजल वदूद से बात कीजिएगा 28 साल का अंडरराइटिंग का तजुर्बा है लाइफ क्रिटिकल इलनेस डिसेबिलिटी ट्रेवल इंश्योरेंस हर इंश्योरेंस के मामले के लिए फजल वदूद ऑफ इंश्योर प्रो 905-607-5000 905-607-5000
Yeah. سن رہے تھے آپ پروگرام ساز و آواز اور میرا نام عارفہ مظفر صاحب. یہ چینل آپ کا اپنا ہے, ہماری ویب سائٹ www.eawaz.com ہے. بہت سی جگہوں پہ جب آپ کو اسٹیٹک ملتا ہے تو ہمارا لوکل نمبر 6478724900 آپ پروگرام کو بالکل سن سکتے ہیں اپنے فون پہ, اور جب آپ کا امپورٹنٹ فون آئے گا تو آپ اپنی کال لے لیجئے گا. اس پروگرام کو ہم یہیں اختتام کی طرف لے کے چلتے ہیں. میں نے ہمیشہ آپ سے ایک ریکویسٹ کی ہے کہ اپنی دعاؤں میں ان تمام کو ضرور یاد رکھیے جو آج ہمارے ساتھ اس دنیا میں نہیں ہیں. کہتے ہیں اچھا کرو, اچھا بو, اچھا کاٹو. اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے, اور وہ جو آج اس دنیا میں نہیں ہیں ان تمام کو جنت الفردوس میں جگہ دے, ان کی منزلوں کو آسان کرے, قبروں کو جنت کے باغوں کا حصہ بنا دے. آمین سم آمین. اللہ تبارک و تعالی جن کی اولاد نہیں ان کو اولاد دے اور رزق عطا کرے اپنی جناب سے. اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو اور ہم تمام کو اپنا محتاج کرے, کبھی کسی انسان کا محتاج نہ کرے. ان سب کے ساتھ جانے والوں میں مظفر علی کو اپنی دعاؤں میں ضرور شامل رکھیے گا. اجازت دیجیے گا, ایک دعا کی طرف بڑھتے ہیں میری جانب سے. خدا حافظ.
مانگتا ہوں عطا, مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا, مانگتا ہوں عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ, نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے, نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے, تیرا ہوں میں تجھ سے عطا مانگتا ہوں, کرم مانگتا
جو بیمار ہے ان کو صحت عطا کر، مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں، مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، الہی ہمیشہ دو مسرور رکھنا، بلا سے ہم کو صدا دور رکھنا، الہی ہمیشہ دو مسرور رکھنا، بلا سے ہم کو صدا دور رکھنا، پریشانیاں ہم کو گھیرے ہوئے ہیں، پریشانیاں کو گھیرے ہوئے ہیں، پریشانیوں سے پناہ مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، الہی تجھے واسطہ پنجدن کا ہو شاد گنچا دلوں کے چمن کا۔
WTOR Youngstown, Toronto now concludes a full day of broadcasting activities. WTOR is owned and operated by Birosh Broadcasting Corporation and operates on an assigned frequency of 770 kilohertz as authorized by the Federal Communications Commission, Washington, D.C. Do join us again in the morning hours when we resume with the sounds of our world in words and in music. Thank you.
आप सुन रहे हैं आपका अपना रेडियो 770 AM। हमारे प्रोग्राम को टोरंटो में सुनने के लिए डायल कीजिए 647-872-4900, मॉन्ट्रियल 514-907-6288। इसके अलावा कैलगरी, वैंकूवर, एडमिंटन और रिजाइना के नंबर्स आप eawaz.com की वेबसाइट पर जाके हासिल कर सकते हैं। हमारी लाइव 24 घंटे की नशियात के लिए विजिट कीजिए eawaz.com। लाइक करें फेसबुक पेज eawaz, डाउनलोड करें फ्री eawaz ऑफिशियल ऐप। रेडियो 770 AM वॉइस ऑफ कम्युनिटी। फॉर मोर डिटेल्स विजिट eawaz.com।
जी। हम ढूंढ आए जहां सारा बना पाया नहीं अब तक खुदा तुमसे कोई प्यारा जमीन से आसमां तक हम ढूंढ आए जहां सारा बना पाया नहीं अब तक खुदा तुमसे कोई प्यारा पढ़ लेगा जहाँ सारा हुआ ना होगा अब कोई यहाँ हम दो सा दोबारा मैं दुनिया भर की तारीफें तेरे सजदे में लाया हूँ मैं तुमसे इश्क करने की इजाजत रब से लाया हूँ का शुक्राना खुदा से रोज करता हूँ तू है जो रूबरू मेरे बड़ा महफूज रहता हूँ तेरे मिलने का शुक्राना खुदा से रोज करता हूँ
हमको पता
अब तू ही समझा रे दिखे तुझ में मेरी दुनिया तू बन जा रे ओ खुश किस्मत जो किस्मत से तुम्हें ऐसे मैं पाया हूँ मैं तुमसे इश्क करने की इजाजत रब से लाया हूँ
मुझे ताज़ा मुझे ताज़ा
कब सीधी राह चला, राह मुड़े तो मुड़ जाने दो।
Thank you. लेके आए हैं बीते दिन की किताब, घेरे हैं अब हमें यादें बेहिसाब।
Oh, My जादू नैना काले तेरे में हवाले हुआ सीने।